नंद बाबा ने ऐसा कौन सा कल्याणजनक कार्य किया था अथवा महा महोदय नंद महोदय ऐसा कौन सा कल्याणजनक जनक कार्य किया था जो कृष्ण को अपनी गोदी में रख करके दुलार तैयार करते हैं और यशोदा जी उससे भी महाभागा उन्होंने कौन से ऐसे कार्य किए थे जिससे हरि सबके चित्त को चुराने वाले हरि अपनी सर्वो मनोहारी लीला यशोदा जी के समीप में किया जो औरों के लिए महाभागा कल हमने इसकी व्याख्या की थी कल या परसों इसकी व्याख्या की उसमें उन्होंने बताया कृष्ण की प्रत्येक लीलाएं ही उदार है ऐसी कोई लीला नहीं है जो उदार उदार माने क्या उदार किसको कहते हैं जो जो कुछ माने वो बिना किसी हृदय में कुछ रखे प्रेम के साथ में उदार उदारता पूर्वक किसी ने एक छोटी कौड़ी मांगी दे दी छोटी कौड़ी मांगी तो उसको पूरा कौड़ी दे दिया छोटी उड़ी नहीं पूरी कौड़ी माने जो जो चाहता है उसे कुछ अधिक मिला कर जिन्होंने मुक्ति मांगी उनको मुक्ति दे दी बल्कि जो मरने आया उसको ही मुक्ति दे दी ये तो कहते हैं उदार ये बात तो गलत नहीं ये समझ जो भक्ति मांगने आया उसको दे दिया प्रेम और जो प्रेम मांगने आया
मान
उसको ऊपर का प्रेम दे दिया इसलिए कृष्ण बड़े उदारता तो शांत रस के कृष्ण में भी है दास्य रस में भी है किंतु जिन आश्रयों में उत्तरोत्तर भाव वर्धित होता जाता है कृष्ण उनके निकट आने से उनकी उदारता भी बढ़ती जाती है ये सब भाव के ऊपर में निर्भर है यदि कोई भिखारी कुछ मांगता है जो मांगता है राधे श्याम कहा रास्ते पर आकर के गली दरवाजे के सामने उसको जल्दी से किसी लड़के के द्वारा या किसी प्रकार से उसको दे दिया कोई सोचा जी हमारे मठ का वैष्णव कोई आया है मांगने के तो क्या करे खुद ही आ जाएगी समाचार पूछेगी मठ का आप लोग ठीक हैं मठ में और बड़े प्रेम के साथ में जो कुछ वे देगी तो वो पहले मुट्ठी में कम लेती थी, अब वो मुट्ठी भर करके लेती थी। और यदि मटका कोई प्रधान आदमी वहां पर पहुंच जाए तो और स्वयं गुरु या वैष्णव लोग उत्तम कोटि वाले वहां पर पहुंच जाए तो कहना है उनको मांगना नहीं पड़ेगा, उदार होकर के। तो कृष्ण दाताओं में सबसे उनके पास में कोई चीज की कमी नहीं, इसलिए उदार। इसलिए जैसे जो सुधा जी ने ऐसा और नंद बाबा ने ऐसा कौन सा कार्य किया जो कृष्ण मुक्ति दाता भी है, आगे के श्लोक में आएगा। कृष्ण सब कुछ देने वाले हैं, वह प्रेम जो कि ब्रह्मा और शंकर और लोगों की तो बात ही क्या है, वसुदेव और देवकी को भी नहीं दिया, और वह प्रेम नंद और यशोदा जी को। उसके लिए कह रहे हैं ये उनका जो प्रेम था कृष्ण ने किए जो वात्सल्य रस से उनकी सेवा को ग्रहण किया और उनको आनंदित किया, उसी के लिए कह रहे हैं पितरो न अन्न व्यंदेता कृष्ण उदार अर्भ के एकदम गायंतो अध्याप कवयो जल रूप समलाप। हम एक दूसरा श्लोक 10-8 में से दे रहे हैं, ये कर रहे हैं कृष्ण की ये मधुर लीलाएं, बाल्यकाल से जितनी भी मधुर लीलाएं उनको श्रवण करके सब प्रकार के लोग गायन से अध्यापी कवयो कवि लोग माने ब्रह्मा व्यास नारद सुखदेव पराशर इत्यादि जो गायन करते हैं तो उनके श्रवण करने से क्या होता है, सब लोगों के सब प्रकार के पापों का नाम हो जाता है, समलापहम। जिनकी कथा श्रवण करने से किनकी, कृष्ण के प्रति नंद और यशोदा इत्यादि की जो कथाएं हैं या उनको उनके इच्छा अनुसार उनको आनंद देने के लिए तृप्ति विधान करने के लिए कृष्ण ने अपना पुत्र उनका पुत्र बन करके और उनके पति जो लीलाएं की उनका श्रवण करने से किसके द्वारा जो लिखा है व्यास जी पराशर जी नारद जी ने व्यास जी ने सबसे अधिक और उसका वर्णन किया उन कथाओं का लीला कथाओं का श्रवण करने से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये क्यों लिखा है, पाप नष्ट होता है ये गौण कार्य है या मुख्य कार्य,
गौण है, गौण
आग जलती है उसे प्रकाश होता है और उससे गर्मी अपने आप दूर हो जाती है। ठंडे के दिनों में जबकि चूल्हे जलते थे अब तो गैस है ये सब हो गया तो जानबूझकर के लोग रसोई करने जाते थे, इसलिए वहां पर ठंडी भी दूर हो जाएगी, थोड़ा सा इधर उधर चला दिया और गर्मी भी लग जाती। तो उसी तरह से भगवान की लीला कथाओं के में से परमानंद तो होता ही है, साथ साथ में सेवा प्राप्ति होती है, प्रेम होता है और अन्य रूप में गौण रूप में पाप भी दूर हो जाते हैं। और उसी का आज भी कभी लोग गायन किया करते हैं, कौन गायन करता है, उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी, उसके बाद में सुख गोस्वामी, उसके बाद में रामाजू मध्वाचार्य विष्णु स्वामी निम्बादी हमारे सब गोस्वामी लोगों ने अधिक रूप से उनका गायन किया, कैसे सनातन गोस्वामी, कैसे दामोदर लीला है उसकी टीका की, नमामीश्वरम टीका की, और उसमें जगत बढ़ी। उसको सुन करके लोग आकृष्ट हो जाएगा, उससे पाप तो अपने आप दूर हो जाएंगे, संसार में जो बिखरा हुआ मन है वो भी एकाग्र होकर के भगवान की शरण में मिल जाएगा। कुछ दिनों के बाद में संसार भूल जाएगा, संसार से मुक्ति भी हो जाएगी, भगवान के चरणों में अपने आप प्रेमा भक्ति हो जाएगी। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अति क्या कहूं, पितरो न अन्य बिंदे ध्यान अनुदेव देव, उनके पितरो, पितरो मैंने
माता के पिता से पितरो,
माता और पिता किसके लिए कर रहे हैं, अभी बाल्य स्थिति में, अभी उनके घर में अभी जन्म लिया है, अभी वही वर्णन कर रहे हैं। अभी नौवें स्कंद तक कथा कर सके, अब दसम स्कंद में प्रवेश करके अभी छठवें या तृतीय से आरंभ किया है, चतुर्थ पंचम में उनका जन्म और नंद बाबा का ये सब बतलाया, और इसके बाद में नंद बाबा गए हैं कर देने के लिए और घर में सुना है, उस समय की ये कथाएं चल रही हैं। अभी असल बात को सुखदेव गोस्वामी छिपा रहे हैं, अभी तक तो उनके कहने का यही तात्पर्य है, ये पिता हैं वसुदेव और देव, क्यों अभी होश हवास उनका है व्यास जी का,
सुखदेव गोस्वामी का,
सुखदेव गोस्वामी का होश है, अभी अभी बाल्य लीला का अभी कर रहे हैं, उतना उनका आवेश नहीं हुआ जितना कि पीछे उनका हो जाएगा, इसलिए जबकि अपने मन पर कंट्रोल नहीं रहेगा तो सत्य बात अपने आप निकल जाएगी। अभी जब तक मन पर कंट्रोल है तब तक उनको प्रसन्न करने के लिए राजा को यही बतला रही है, तुम्हारे वंश वाले पूर्वज जो कृष्ण हैं, वासुदेव कृष्ण देवकी और वसुदेव के ये पुत्र हैं, ये चीज बतला है, किंतु जब आएगा भी अगले श्लोक में ही आएगा, जब कृष्ण पुत्री भूते जनार्दन दाम्पत्यो नितराम आसीत गोप ग्रोपेषु भारत, आगे पुत्री भूते, पुत्र के रूप में जब कृष्ण नंद बाबा के घर में उत्पन्न हुए उस समय गोप और गोपियों में सबसे अधिक स्नेह यशोदा जी ने और नंद बाबा ने, उन्होंने सबसे अधिक जब उनके घर में पुत्र के रूप में, और विशेष करके नंदा स्वपुत्रम आदाय, स्वपुत्रम आदाय प्रोक्षगत उदार भी, स्वपुत्रम आदाय अपने पुत्र को लेकर अपनी गोदी में रखा, कब जब वहां से लौट करके मथुरा से आए, और उसमें वसुदेव जी ने इंगित से ही इस बात की इंगित दी, संकेत दिया, हमारा पुत्र बलदेव और उसका छोटा भैया दोनों आनंद से हैं, जल्दी से लौट जाइए, जल्दी से लौट जाइए, कहीं विपत्ति कोई ना आ जाए। तो वहां पर उन्होंने इंगित रूप में दिया, जैसे मेरा पुत्र बलदेव और उसका छोटा भैया माने हमारा ही पुत्र उसी का छोटा भैया, यही बतलाया संकेत के अनुसार, वो भी मेरा पुत्र है, दोनों ठीक हैं, साधारण रूप में इसका अर्थ ही है। उनके इस कहने पर भी नंद बाबा का जो स्नेह है कम नहीं, देवकी ने ये कहा कि ये मेरा पुत्र है, तो उनका स्नेह यशोदा जी का और बढ़ गया, ये हमारा पुत्र इतना गुणी है, इसको इसकी बात क्या, देवकी की बात क्या, सब जगत के लोग कहते हैं कि मेरा पुत्र है, इतना हमारा और पुत्र भाव बढ़ गया। इसी तरह से वसुदेव जी ने इंगित दिया कि ये मेरा पुत्र है, तो भी उनका पुत्र प्रेम कमने के बजाय और अधिक बढ़ गया, इसी को कहते हैं नंदा सपुत्र, स्वपुत्र माने क्या होता है,
अपना पुत्र,
वसुदेव जी के लिए स्वपुत्र नहीं कहा, पुत्र हो सकता है कि कहीं कहा स्वपुत्र, बल्कि यही नहीं, सपुत्र के बदले उन्होंने कह दिया आत्मज उत्पन्न,
नंदस्तु आत्मज उत्पन्न,
आत्मा से उत्पन्न होने वाले को आत्मज कहते हैं। जिसको गर्भधारिणी मैया गर्भधारण करती है और फिर उसे जो उत्पन्न होता है उसको कहते हैं आत्मज। नंद महाराज कि ये आत्मज थे, और यहाँ पर सभी ने पीछे से बतलाया ये नंद और यशोदा के ही पुत्र थे, इसलिए यहाँ पर साधारण रूप में पितरऊ जो कहा, इसलिए कहा जन्म देने वाला पिता माता होता है अथवा
भयस्त्राता,
भयस्त्रादा पालन पोषण करने वाला, उपनयन देने वाला, विवाह
कन्या विवाहिता
जिसकी कन्या से विवाह होता है, ये सब पिता हैं। किंतु मुख्यतः पिता कौन है, कौन है? कहीं कहीं पर कोई कोई प्रधान हो जाता है, प्रधान हो जाता है कभी कभी अपनी सेवा के द्वारा। जैसे कर्ण के लिए प्रधान उसकी मैया कौन हो गई, इनको छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने त्याग दिया था, तो कभी कभी ऐसा। और कभी कभी जन्म देने वाला पिता ही प्रधान होता है, कभी कभी पिता माता मर गए हैं, जो पालन पोषण किया वो पिता बन गया, कभी कभी माता पिता नहीं रहे या रहे भी तो उनको त्याग कर दिया, तो जिसकी कन्या से विवाह हुआ वो अपने घर में उनको रख लिया और पोषण घर का अपनी संपत्ति सारी उनको दे दिया, हमारा उसका अधिकार जो कुछ है अब उसका वो कुछ बन गया। और कभी कभी जो अनुभव करने वाले हैं गुरु को पिता कहते हैं, अपने साथ पिता माता सब को छोड़ करके गुरु के प्रति या उपनयन, उपनयन माने उपनयति नयति, भगवान के पास में जो ले जाता है वो सब अपेक्षा पिता है। और इन सब से भी सर्व पिता के भी पिता कौन है,
कृष्ण जगत के पिता।
इसलिए साधारण रूप में पिता मा करो यहाँ पर कहा। माता पिता जो वसुदेव देवकी को जो लीला रस आस्वादन नहीं कराया उस रस को भी उन्होंने आस्वादन किया। कैसे, कल बतला रहा था कृष्ण दुतुरुओं पर चल रहे हैं और चलते 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 जब दरवाजे पर आते हैं तो किसी को देखा, घोड़े को, कुत्ते को, बिल्ली को, जैसे भी देखा और छट एकदम और भूल गए, जल्दी दौड़ते हाथ पैर सुनते मैया यशोदा की गोदी में, ऐसा वसुदेव देवकी के। और भी लीलाएं जैसे कल कर रहा था घर के चारों तरफ में आजकल प्राचीर होती है,
चार दीवार,
प्राचीर मैंने क्या,
चार फुट
उसकी दीवार रहती है और उसके बाद में फिर दूसरे काशी में आता है। तो वहां पर ब्रज में एक घर के पीछे कांटे लगा देते थे, बेर के जो सूखे बेर होती हैं छोटी छोटी, उसके कांटे बहुत होते थे। राजस्थान में प्रचुर है, उसको काट करके सुखा दिया, उनको सूखने के बाद में उसको घर के चारों तरफ में लगा दिया, जिसमें कि गाय बैल कोई जानवर कोई आदमी भी उसको लांग नहीं। पहले लोग उसी को ही उल्लंघनीय मानते थे, वो क्या एक रेखा ऐसी खींच दी उसको भी लंगना पाप समझते थे। अब तो कोई चोर आया और जला दिया, बस क्या हुआ, कांटे का नाम निशान नहीं होगा, खत्म होगा एक सेकंड में। घर में आप सोए हैं, इंजेक्शन से एक दवा भीतर में जाने का रास्ता नहीं है, किंतु इंजेक्शन छोड़ दिया और उससे सब लोग सो गए। अब दरवाजा तरवाजा तोड़ करके या काट करके छत पे पहुंचे, आजकल कोई कुछ इस वैज्ञानिक युग में कुछ भी असंभव। तो पहले कांटे का ही दीवार खड़ा कर देते थे, उसमें कुछ लताएं बेली चमेली की उठ रही हैं और सुंदर खिल रही हैं। कृष्ण से लोग छोड़ा नहीं गया, उस फूल को देकर के तोड़ने के लिए कृष्ण और बलदेव जी नंगे अभी हैं, अभी खेल रहे हैं, दोनों घर से बाहर निकले और देखा उस पर फूल खिला हुआ है। या वो त्रिकोले होता है जिसको बिंब फल कहते हैं, लाल लाल हो जाता है, होता है हरा, और फिर पकने के बाद में बहुत कोमल बहुत पतले छिलके वाला वो बनता है। पक जाने पर बच्चे
मीठा क्या लगता है,
मीठा और खट्टा दोनों। तो वो कृष्ण अब लोग संभव नहीं कर सके, अभी छोटे छोटे बच्चे नंगे हैं, बस किसी प्रकार से जगह इधर उधर देखा, बलदेव जी वहाँ पर खड़े हैं,
लोग
देख रहे हैं, और बलदेव कृष्ण क्या किया, इधर से उधर जाते हुए भीतर में घुस गया, कांटे लग रहे हैं कोई बात नहीं, एकदम भीतर में चला गया और उसको तोड़ रहा। इतने में जिस कांटों को हटा करके आया था वो कांटे नीचे
दब गया,
दब गए, रास्ता बंद हो गया, अब कहीं निकलने की कोई चीज नहीं। अब कृष्ण वहीं से रोने लग गए, फूल तो ले लिया या फल तो ले लिया, निकल नहीं
पाया।
अब बलदेव जी वहीं से रोने लगे और ये भी रोने लगे, मैया मैया चिल्लाने लगे, मैया काम थी थोड़ी देर के बाद में, कहां से रोने की शब्द आ रहा है, देखा जी कृष्ण बलदेव कहां तो है नहीं, खोलते खोलते दरवाजे और ये कृष्ण मैया मैया मैया, देखा कि अरे ये तो बदमाश कांटे के भीतर में घुस गया है और वहीं से रो रहा है। मैया को देख करके और जोर से रोने लग गया। मैया ने बड़ी मुश्किल से उन कांटों को हटा करके धीरे धीरे किसी प्रकार से साफ करके और वहीं से कृष्ण एकदम चिपक गए और मैया मैया कह करके रोने लगे। मैया कभी मारू रो रहे हैं सब कभी मारू ये सब देवी को ये सब मालूम ये आस्वादन हुआ नहीं। कृष्ण किसी समय में अब थोड़े से और बड़े हो गए, आज उनका जन्म दिवस है। मैया ने कहा कि जा वो बछड़ी या बछड़ा है ना उसको ले आ, उसकी आज पूजा करके तुमको अभिषेक करा करके और ये सब उनको मालपुआ इत्यादि खिला करके उनकी पूजा के बाद में तुमको कुछ देगा। कृष्ण देखा जैसे एक बछड़ा पूजा करा था, बड़ा राज हंस जैसा पुष्ट एकदम ऐसे उसका कृष्ण ने जा करके उसको गले से पकड़ लिया। अब वो उधर खींच रहा है ये इधर खींच रहे हैं, धस्ता धस्ती होने लग गए, कृष्ण ही नहीं छोड़ेंगे और वो भी सहज वो पैर को अड़ा दिए। बड़ी धस्ता धस्ती के बाद किसी प्रकार से धीरे 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 हाँपते हुए बछड़े को
ले आए,
ले आए। इतने में देखा ऊपर में सिक्का लटक रहा है, अब सिक्का में देखते ही घड़ी में
पानी आ गया,
तो मुख में पानी भरा है मक्खन, ताजा मक्खन। इसलिए बछड़े अब गौण हो गया और वो लेना हो गया मुख, उसके कैसे लिया जाए, इस बछड़े को भी नहीं छोड़े और मक्खन भी ले लें, सब काम एक साथ में हो जाए। कहा जी बछड़ा को नहीं छोड़ करके बछड़े को वहीं पर चुपचाप खड़ा कर दिया कुछ कार करके और उसके ऊपर में करके उसको ले, इतने में जमीन थोड़ा सा स्पर्श हुआ एकदम बछड़ा सुधा भगा अब वैसे ही मैया 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 करने लग गए। मैया कोई काम कर रही थी, मैया वहां से हड़बड़ाई ही दौड़िए क्या हो गया क्या हो गया। तो जब आई थी तक यहाँ देखा जैसे ऊपर में टंगा हुआ मैया मैया कर रहा है। अब मैं तुमको नहीं छूंगी
वहीं पर रह,
अब वहीं पर आने तो ऊपर से गिर तुम्हारा पैर हाथ छूटेगा देखे, किंतु रोक नहीं सकी, फिर निकल के गई। अच्छा डंडा लेकर के गई देख, पहले तो उनको उतारा और कहा मालूम अब तुम्हें भी इतनी चंचलता जो कर रहे हैं उनका कृष्ण के प्रति प्रेम स्नेह कम रहा है ना बढ़ रहा है,
बढ़ रहा है।
यदि इतनी चंचलता नहीं करते ना एक भोलेनाथ की भांति चुपचाप जहाँ लेटा दिया पड़े रहते ऐसे ही चुपचाप पड़े, दूध भी नहीं मांगना, रोने रो नहीं शीशा कर नहीं रहे, तो इतना आनंद होता है। एक पिता माता बच्चे के इस स्नेह रूपी मधु से जीवन को कृतार्थ, ये यदि चीजें न रहे आदमी विवाह शादी करना किस लिए चाहता है? दूसरे का यह वैभव देखता है। इससे घर में बच्चे हैं, जिस घर में बच्चे नहीं होते वो घर क्या है? स्मशान भूमि की तरह रेगिस्तान है। और जिसके घर में दो चार बच्चे हैं, ऊ मरकर लड़ाई झगड़ा इधर उधर आधम कर रहे हैं ना, बस इसी के लिए लोग तरसते हैं और कोई बात नहीं। जिसके घर में ये सब चीजें नहीं है, कोई आवाज नहीं है, शब्द नहीं है, बच्चे नहीं रो रहे हैं, रात में 12-1 बजे नहीं रोते हैं, समझो जिसे भगवान ने ऐसी माया बनाई लोगों को आकृष्ट करके। और किस लिए? भगवत भक्ति जो दुर्लभ है इसको छिपाने के लिए। इन लीलाओं का अवतरणा इसलिए हुआ कि इन कथाओं को सुनने से वो माता पिता और लोग जिनके घरों में बच्चे हैं वो लोग इन कथाओं से आकृष्ट होकर के सुनेंगे और उनका चित्त गरीब हो जाएगा। इससे होगा क्या? उनके जितने मल हैं सब दूर और कृष्ण के चरणों में उनका अनुराग हो जाएगा। इसीलिए जान बुझ करके ऐसा, इसलिए वो कह रहे हैं और भी दशम स्कंध में बहुत सी लीलाओं का वर्णन किया गया है इसी प्रकार के भगवान। और तीर्ण होने पर माता पिता वसुदेव और देवकी कृष्ण के उन उदार लीलाओं का स्वादन नहीं कर सकी देवकी और कोई भी नहीं, बल्कि जन्म से आरंभ करके कृष्ण के या उसके पहले से ही कंस के कारागार में एकदम हथकड़ी और बेड़ियों में बांध करके रख दी गई। कब तक? कृष्ण जब तक ही 10-12 वर्ष के नहीं हो गए और मथुरा में नहीं लौटे तब तक उनको निर्यातन किया गया। देखिए उस लीला में भी उसके पहले कितना कठोर परिश्रम किया इन लोगों ने, बस देव देखी ये थे कौन? अदिति। कठोर परिश्रम किया, कठोर साधन किया और इस जन्म में भी कितने कष्ट सहे साधारण बात नहीं है। और तभी इनको वो बात का लरस नहीं मिला जो देव वसुदेव नंद बाबा से सुना। इसलिए कहते हैं कि महाभारत, इसलिए महाभारत, इसलिए महात्मा ने ये नंद बाबा यशोदा जी हैं। भक्ति, मुक्ति, भक्ति, प्रेम इत्यादि का जो मैंने पहले वर्णन किया, कोई भी चीज हो कृष्ण उदारता के साथ में इनको देते हैं, इसलिए कृष्ण महत्व हैं, उदार हैं। विशेष करके प्रेम को देना नहीं चाहते, क्यों? कृष्ण के प्रेम के द्वारा कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं, सर्वस्व देना हो उनके सेवक बन जाना पड़ेगा। तो यदि ये मुक्ति मांगने वाले और लोगों के वशीभूत हो जाएंगे तो इनको तो तंग करते रहेंगे। अभी हम लोग उनकी थोड़ी सी सेवा की, जैसे शंकर जी हैं और भरदान थोड़े में प्रसन्न होते हैं, कहेंगे बरम द्रोही पार्वती जी के साथ में आए हैं, पार्वती जी बड़ी सुंदर सुकुमारी 16 वर्ष की किशोरी जी सब समय अवस्था में रहते हैं, उनको देख करके वर्त मांगना था कुछ और मांगा क्या? जिसके सिर पर हाथ रख दूं जल करके भस्म हो जाए। ये केवल पार्वती जी के लिए ऐसा वर्णन, वो तो भगवान है जो रक्षा कर दी, तो रक्षा होना बड़ा भारी कठिन था, उन्हीं के बल पर ये शंकर जी सब कुछ दे देते हैं कि हमारी रक्षा करें, अंत में उनकी रक्षा करें। ये लोग कह दे देंगे, इनको कृष्ण भक्ति नहीं देते, क्यों? राखे ने लुकाइया, लुका करके छिपा करके रखते हैं भक्ति को। मुक्ति और ये स्वर्ग, मुक्ति भुक्ति भोग